नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
तमाम कयासों को गलत साबित करते हुए बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरों का ऐलान कर सबको चौंका दिया। राजस्थान में पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ऐसे नाम थे जिनकी दूर दूर तक चर्चा नहीं थी। तो जमे जमाए अनुभवी नेताओं के बजाय नए चेहरों पर दांव लगाने के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति, इस पर बात करते हैं नवभारत टाइम्स की असिस्टेंट एडिटर पूनम पांडे से। पूनम जी, चर्चित नामों के बजाय नए चेहरों को आगे लाने के पीछे बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी दिख रही है?
जी, जिस दिन काउंटिंग थी उस दिन जो नतीजे आए और जिस तरीके से बीजेपी ने तीनों राज्य में अच्छी जीत हासिल की, उससे ये अनुमान उसी वक्त लग रहा था। और नवभारत टाइम्स ने, नवभारत गोल्ड ने ये बताया भी था कि जब इतनी अच्छे तरीके से बीजेपी तीन राज्यों में जीती है, तो ये बीजेपी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी हमेशा ही संगठन के लिए और नई लीडरशिप तैयार करने के लिए काम करती है। तो उस समय भी हमने कहा था कि ये बीजेपी के लिए मौका है नई लीडरशिप तैयार करने का, और इसकी बहुत प्रबल संभावना है कि बीजेपी पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को सामने ला सकती है ताकि तीनों राज्यों में वो नई लीडरशिप दे सके। और ये तीनों राज्यों में ये सही भी साबित हुआ। और अगर हम तीनों सीएम जो नॉमिनेट किए हैं, इनका बैकग्राउंड देखें तो तीनों ही संघ बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये भी इसका एक साफ मैसेज है कि बीजेपी ने जो कथित तौर पर बड़े चेहरे जिन्हें कहा जाता है उनकी अनदेखी की, उनको एक तरीके से आगे नहीं किया, बल्कि उन लोगों को चुना जो पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और खासकर जो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। अगर हम अलग अलग तीनों राज्यों को देखें तो जो छत्तीसगढ़ में सीएम बन रहे हैं विष्णुदेव साय, उनकी संघ की पृष्ठभूमि है, उनका पूरा परिवार जनसंघ के वक्त से ही संघ से जुड़ा हुआ है और जमीनी स्तर से वो राजनीति में से उन्होंने शुरुआत की। पहले पंच रहे, फिर सरपंच बने, फिर विधायक से लेकर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। और इसी तरह मध्य प्रदेश में मोहन यादव सीएम बन रहे हैं, तो वो भी संघ के बेहद करीबी हैं और उन्होंने जो अपनी राजनीति की शुरुआत की थी संघ का छात्र संगठन एबीवीपी, उसके नगर मंत्री से उन्होंने एक बहुत छोटी इकाई से वहां से शुरुआत की थी, फिर प्रदेश स्तर पे वो में आगे गए और एबीवीपी से फिर बीजेपी के जो युवा मोर्चा है उसमें वो शामिल हुए, उसमें उन्होंने अलग अलग स्तर पे काम किया। उसके बाद जाकर उनकी मेन पार्टी बीजेपी में एंट्री हुई और उसमें भी उन्होंने जो जिला महामंत्री बनने से पहले नगर लेवल पे वो पदाधिकारी रहे, उसके बाद फिर प्रदेश की टीम में आए। और इसी तरह राजस्थान में जो नाम आया है भजनलाल शर्मा, वो पहली बार विधायक बने हैं और उन्होंने भी एबीवीपी से अपनी शुरुआत की। वो भी पहले एबीवीपी में रहे, उसके बाद युवा मोर्चा में आए और नगर स्तर से लेके जिला, फिर प्रदेश में। तो साफ तौर पे ये मैसेज है कि बीजेपी लगातार अपने हर कार्यकर्ता को देखती है, उन्हें पता है कि कौन जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। तो ये स्पष्ट मैसेज कार्यकर्ताओं के लिए भी है।
जी, छात्र राजनीति से शुरुआत और संघ से नजदीकी, ये बात तीनों जगह हमें कॉमन दिख रही है। तीनों हिंदी भाषी राज्यों में एक जगह आदिवासी, दूसरे में ओबीसी और तीसरे में ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने क्या संदेश देने की कोशिश की है?
जी, पूरी तरीके से जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। सिर्फ सीएम ही नहीं, तीनों राज्यों में दो दो डिप्टी सीएम भी बनाए हैं। तो अगर हम वो सब देखें, तो अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो जो दो डिप्टी सीएम हैं, एक अरुण साव हैं, वो अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, वो ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज में भी साहू समाज से आते हैं। जो छत्तीसगढ़ में साहू समाज ओबीसी में सबसे बड़ा वर्ग है। और दूसरे डिप्टी सीएम हैं वो विजय शर्मा, वो कवर्धा सीट से आते हैं, वो एक तरीके से हिंदुत्व की राजनीति भी करते हैं। कवर्धा एक तरीके से हिंदुत्व का गढ़ वहाँ रहा, वहाँ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स भी हमने चुनाव के दौरान देखी। तो उन्होंने वहाँ छत्तीसगढ़ में भी हर तरीके के समीकरण का ध्यान रखा। और मध्य प्रदेश में देखें, अगर मुख्यमंत्री ओबीसी से आते हैं और तो एक डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा वो एससी से आते हैं, दूसरे डिप्टी सीएम हैं वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं राजेश शुक्ला, और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को स्पीकर बनना है वहाँ वो ठाकुर समुदाय से आते हैं। इसी तरह राजस्थान में भी अगर देखें, मुख्यमंत्री के अलावा जो दो डिप्टी सीएम हैं, एक प्रेमचंद बैरवा वो एससी से आते हैं और दूसरी दिया कुमारी जो राजघराने से ताल्लुक रखती है। और इसमें ये भी देखना जरूरी होगा क्योंकि अभी वसुंधरा राजे अब एक तरीके से सेंटर में नहीं है, बीजेपी की पॉलिटिक्स के राजस्थान में, अफकोर्स वो उनकी स्टार प्रचारक होंगी, संगठन में काम करेंगे, लेकिन एक रानी के बदले दूसरी रानी की एक तरीके से राजस्थान में एंट्री हुई है डिप्टी सीएम के तौर पर, वो दिया कुमारी जयपुर राजघराने से आती हैं, तो सारे समीकरण का बीजेपी ने ध्यान रखा है।
जी, जातिगत समीकरण के जरिए शायद 2024 पर नजर है, ऐसा दिख रहा है। अब नए चेहरों पर दांव लगाकर बीजेपी ने पुराने दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर दिया है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? सीनियर नेताओं को साइडलाइन करना क्या बीजेपी के लिए रिस्की नहीं हो सकता?
इसको दरकिनार करना इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि बीजेपी लगातार ही ये कहती रही है कि सभी को मौका मिलना चाहिए, नई लीडरशिप को मौका मिलना चाहिए। तो लंबे वक्त से ये राजनीति का केंद्र रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें, शिवराज सिंह चौहान 17 साल से ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री वो रहे, वसुंधरा राजे पिछले 30 साल में अगर देखें तो बीजेपी का मेन चेहरा रही, या तो वो मुख्यमंत्री रही या फिर मुख्यमंत्री उम्मीदवार रही थी। इसी तरह रमन सिंह लंबे वक्त तक सीएम रहे। तो उनको दरकिनार करने की बजाय ये कहा जा सकता है कि बीजेपी उनके अनुभव का इस्तेमाल दूसरे तरीके से कर सकती है और कार्यकर्ताओं को, नई लीडरशिप को मौका दिया है ताकि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह हो आगे बढ़ने का। कार्यकर्ताओं को भी ये लगे कि अगर वो लगातार पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मौके हैं, ये नहीं कि पुरानों को ही बार बार मौके दिए जाएंगे।
जिन सीनियर नेताओं के नाम इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहे थे, अब इन्हें हम जल्द ही क्या किसी नई भूमिका में देखेंगे, राज्य या केंद्र में?
जी, जो मुख्यमंत्री की रेस एक तरीके से मीडिया का ही क्रिएट किया होता है और बीजेपी का अगर हम पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमेशा ही बीजेपी इस तरीके के फैसले लेती हैं जिनके नाम कहीं नहीं चल रहे होते हैं, अचानक से वो मुख्य केंद्र बन जाते हैं और तीनों राज्यों में वही हुआ। अभी वसुंधरा राजे के पास संगठन में पद है, वो राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट हैं और शिवराज सिंह एक तरीके से काउंटिंग के दूसरे दिन से ही प्रचार में लग गए थे, वो लगातार लाडली बहनों से मिल रहे थे, उनका सम्मेलन कर रहे थे, हालांकि उसको एक तरीके से उनकी फिर से मुख्यमंत्री बनने के दावेदारी के तौर पर देखा जा रहा था और वो एक तरीके से इनडायरेक्ट मैसेज भी पार्टी नेतृत्व के लिए था, लेकिन उन्होंने घोषित तौर पर कहा कि वो लोकसभा का प्रचार उन्होंने शुरू किया है, मध्य प्रदेश की सारी सीटें बीजेपी को आने चाहिए। तो बहुत मुमकिन है कि दोनों को, वसुंधरा राजे को और शिवराज सिंह चौहान दोनों को संगठन की जिम्मेदारी दी जाए और लोकसभा चुनाव में हो सकता है उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए, अलग अलग स्टेट की उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो संगठन में अब वो भूमिका निभाएंगे।
क्या आने वाले समय में बीजेपी दूसरे राज्यों में भी ऐसा प्रयोग कर सकती है कि जमे जमाए के बजाय किसी नए चेहरे पर दांव लगाए?
बीजेपी इस तरीके के प्रयोग ऑलरेडी कर चुकी है। अगर हम गुजरात में देखें, जब भूपेन पटेल को सीएम बनाया था तो एकदम वो नए थे, जब हमारी उनसे बात हुई तो एक बार उन्होंने अपना एक किस्सा सुनाया भी था कि जब विधायक दल की मीटिंग चल रही थी सीएम बनने के लिए तो बिल्कुल आखिरी रो में बैठे हुए थे और उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए बताया था कि जब नाम का अनाउंस हुआ तो मैं पीछे बैठ के ताली बजा रहा था, तो अचानक से किसी ने कहा कि अरे ये तो आपका ही नाम लिया है, तो मैं एकदम से सरप्राइज हुआ। तो वहां भी उन्होंने नई लीडरशिप दी है। उसके अलावा मनोहर लाल खट्टर को जब उन्होंने हरियाणा में बनाया, संघ से लाकर उन्होंने सीधे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो इस तरीके का ये प्रयोग बीजेपी के लिए नया नहीं है, बल्कि पहले से ही बीजेपी इस तरीके के प्रयोग करती रही है।
जी, तो चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद तीनों राज्यों का सस्पेंस खत्म हो चुका है, अब वक्त है काम करने का। पूनम जी, शुक्रिया आपका।